ओम शांति। आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अभी हम इस ट्रेनिंग का भाग बने हैं, इस सेशन का। अभी जो हम सेशन अटेंड करेंगे उसका नाम है माइंड पावर। तो आप सभी चाहेंगे आपकी माइंड पावर इंक्रीज हो, तो उसके लिए अभी हम स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमार जगबीर भाई जी का। जगबीर भाई जी कृपया मंच पर आए और हमें ये माइंड पावर का सेशन हम सबको देंगे। जगबीर भाई जी स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और भाई जी ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पीएचडी किया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग को इन्होंने रियो ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे भाई जी हमारे बीच में हैं, हम सभी इनसे लाभान्वित होंगे। एक बार बहुत जोरदार तालियों से भाई जी का स्वागत करें। ओम शांति।
सर्वशक्तिमान की संतान हो
तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो।
कौन कहता है महज इंसान हो,
सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो।
आज हम माइंड पावर सेशन के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपने देखा होगा कि जितना हम ज्यादा सोचते हैं अपनी लाइफ में उतना ही मन भारी होता चला जाता है, और जितना हम अपने आप को हल्का रखते हैं, हमारा मन शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, तो हम उतना ही अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, उतना ही हमारी माइंड पावर, हमारी फोकस, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाती है। तो हमने ये देखा कि राजयोग में जब ये सारा स्टडी किया कि कैसे सेल्फ को हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की जो टेक्निक यहां सिखाई गई, तो उसको हमने माइंड पावर से कनेक्ट किया। पहले ये पता नहीं था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फर्क है, और सुपर माइंड जो सुप्रीम सेल्फ यूनिवर्सल सोर्स है संसार को चलाने वाली पावर, तो उससे कनेक्ट करके कैसे हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। इतिहास में बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक विल्मा रुडोल्फ करके एक एथलीट थी, तो उसको बचपन में पहले पोलियो हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि फॉरगेट अबाउट रनिंग, आप अपने जीवन में वॉक भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उस कन्या ने अपने विल पावर से, अपने माइंड पावर से ये विजुलाइज करके, क्योंकि जिस रूम के अंदर वो बैठती थी उसकी खिड़की से कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती थी ग्राउंड के अंदर, और उसको बड़ा उमंग उत्साह आता था कि मुझे भी ऐसा एथलीट बनना है। वो विजुलाइजेशन के थ्रू उसने ये संकल्प किया कि मैं भी ऐसे ही ग्राउंड में दौड़ रही हूं, मेरा भी ये सब जो प्रॉब्लम होगी है ये सब ठीक होती जा रही है और मैं एक इंटरनेशनल लेवल की एथलीट बनती जा रही हूं। ऐसा उसके माइंड में थॉट्स चलने शुरू हुए और धीरे धीरे 13 साल की उम्र में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की और उसी कन्या ने 1960 में रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल लिए ओलंपिक के अंदर। ऐसे ही एक एथलीट थे रॉजर बेनिस्टर फ्रॉम यूके। दुनिया का कोई भी एथलीट 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था। बहुत कोशिश की गई यूनान में, तो इतनी कोशिश की कि जंगली जानवरों को एथलीट के पीछे छोड़ा ताकि वो इतना तेज दौड़ सके। लेकिन जब इस व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया तो 6 मई 1954 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आज भी ये लगा हुआ है वहां पे बोर्ड, इसी ग्राउंड के अंदर इस व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया। और जब मीडिया ने इनसे पूछा कि आज तक सेंचुरी तक इतने लोगों ने ट्राई किया, डॉक्टर सोचते थे कि फिजियोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल है इतना तेज दौड़ना मनुष्य के लिए, तो आपने कैसे किया, तो पता है उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि मैंने ये रेस अपने माइंड में 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स इसको मैंने ग्राउंड में आने से पहले दौड़ा था। और जैसे ही उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया तो इस रिकॉर्ड के ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट ईयर मोर देन 100 एथलीट्स ने रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया दुनिया को। और उसके भी नेक्स्ट ईयर 3/3 मतलब 300 एथलीट्स ने रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया। तो तब से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ये संकल्प चला कि ये ऐसे इतने सेंचुरी तक हम नहीं ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए, और एक व्यक्ति ने किया तो इतने एथलीट्स इसको दोहरा रहे हैं उसी परफॉर्मेंस को, तो ब्लॉक कहाँ है, बॉडी में था या माइंड में था? इट वॉज इन द माइंड। एक व्यक्ति कर सकता है, हमें उमंग उत्साह आता है, यस हम भी कर सकते हैं, और ये सारा खेल मन से है। तो यहां संस्था में आने के बाद हमें पता चला कि मन कहाँ रहता है शरीर में, आत्मा का और मन का क्या कनेक्शन है, कुछ है कनेक्शन आपस में आत्मा और मन का? कहाँ रहती है आत्मा? अभी आपने सेशन सुन लिया है। और मन कहाँ रहता है? अब कहीं पे भी जाकर के, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को पूछा था, अपने गवर्नमेंट के थे, यहां आए थे प्रोग्राम में, उनको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, बोले नहीं नहीं ये तो एक ही है। तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि हम माइंड और ब्रेन को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमारे बॉडी में इतने सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं ट्रिलियंस की संख्या में, और हर चीज हमारे थॉट से इफेक्ट होती है जो कि माइंड में जनरेट करते हैं हम माइंड में परफॉर्मेंस से पहले। तो ये चीज इन्होंने जनरेट की कि मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, एंड ही ब्रोक दिस रिकॉर्ड। तो जब ये देखा गया कि एक एथलीट को उन्होंने बैठाया है, साइंटिस्टों ने, और उसको बैठा करके ऐसे बोला कि आप अपने दोनों फिंगर्स को मूव करो, फिर उन्होंने ब्रेन के अंदर रिकॉर्डिंग की, तो जो एक्चुअल में जो उसने मूव की थी फिंगर्स और ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवेज बन रहे थे, फिर उन्होंने उसको कहा कि आप ऐसे बैठ करके केवल सोचो कि मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूं। तो उन्होंने ये पाया कि काफी सिमिलर रिकॉर्डिंग थी जब केवल हम सोच रहे थे और जब हम एक्चुअल में कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने यहां करके अनेक एथलीट्स के साथ हमने ट्राई किया, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार ये बताया है कि अनेक टीम के साथ फिर ये मेडिटेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं हम लोग करते गए, और ये करते करते हमने ये पाया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कनेक्शन ऑफ द माइंड विद द सुपर माइंड। और हमारे जो डीजी साहब थे साई के, इंजेती साहब, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम हमें ऐसा रेस्पॉन्स दिया कि जगीर भाई आप 1 महीने पहले आए हो, स्टिल यू बी पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स, गो देयर, आप जैसे भी मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत पहले हमें बताना चाहिए था कि ये इस टाइप से इफेक्टिव है। तो कोचेज के बेस पर हमने किया, कुछ प्लेयर्स के रिक्वायरमेंट में किया, तो उसके इतने इफेक्ट आए। जैसे मैंने आपको कल बताया था, रवि मदान भाई हमारे हैदराबाद से, इन्होंने स्टार्ट करवाया बैडमिंटन में मोहम्मद आरिफ सर के थ्रू, और बेस्ट टाइम साइलेंट मेडिटेशन का, गाइडेड मेडिटेशन का, विजुलाइज करने का, मॉर्निंग में जब भी हम सुबह सो करके उठते हैं 5 मिनट, और रात को जैसे ही सोने के लिए जाते हैं अगेन 5 मिनट। ये केवल 2 टाइम ऐसे हैं जो हमारे जीवन के अंदर मैजिकल मतलब चेंजेस ला सकते हैं। इट इज इनविजिबल बट स्टिल इट हैज द इफेक्ट ऑन द विजिबल वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें हमने, जैसे मैंने आपको बताया था भुवनेश्वर में, वहां भी ट्रेनिंग एथलीट्स के साथ की, और जब हम हंगरी गए थे तो जैसे ही मैं राजेंद्रन मणि को ऐसे बोलने लगा कि ब्रदर आपको स्टेज पे जाने से पहले ऐसे रिलैक्स रहना है, तो ही गॉट अनाइड, बोला सर मेरे से अभी बात नहीं करो, मेरा नाम अनाउंस हो चुका है। इतना मतलब प्रेशर था स्टेज के ऊपर जाने से पहले बॉडी बिल्डर के माइंड के ऊपर। और मैंने क्या उसको बोला, जैसे ही मैं ये बात कर रहा था तो प्रेमचंद डेगरा जी पीछे बैठे हुए थे, तो वहां से आए, बोले भाई मैंने इनको बुलाया है, आप इनसे रिलैक्स होकर के बात करो और जो ये कहते जाएं वैसे करते जाओ। तो मैं वो ड्रेसिंग रूम से लेके स्टेज के वहां तक उनसे बात करता रहा। मैंने कहा भाई राजेंद्र मणि आपको ये सोचना है, आई एम ए वर्ल्ड चैंपियन, मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए यहां आया हूं, और ये जो जजेस बैठे हैं इनको आपको फोरहेड में 5-5, 10-10 सेकेंड ऐसे देखना है, दृष्टि देनी, उनसे नर्वस नहीं होना कि ये मार्क्स काट लेंगे। तो आत्मिक स्थिति से आप उनको देखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर के स्टेज पे जाकर के परफॉर्म करके वापस आ जाएंगे। बोला ठीक है सर, और ही वॉज स्माइलिंग मतलब स्टेज पे जाने से पहले। तो उसने जाने से पहले ही बताया कि जगवीर भाई मैं आज तक इतना रिलैक्स नहीं हुआ कॉम्पिटिशन जितना रिलैक्स आप करके मुझे भेज रहे हो। तो पहले क्या होता था कि जैसे ही वहां से अनाउंसमेंट होगी, एक तो ऑडियंस बहुत होते हैं वहां पे, इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती है, हमारे एथलीट्स कई बार उस इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, तो वो कहते हैं शो योर ट्राइसेप्स, ये शो कर रहे हैं बाइसेप्स, तो पॉइंट कट गए ना। तो इसीलिए 1 महीने पहले जो टीम सेकेंड भी नहीं आ रही थी एशिया में, उसी टीम में अंकुर शर्मा यमुनानगर से, ही गॉट द गोल्ड मेडल, राजेंद्रन मणि वन द गोल्ड मेडल, एंड मुरली कुमार फ्रॉम द नेवी। सिंपल ट्रेनिंग कोई खास नहीं, 10 दिन तक उनको सुबह उठ करके वो अपना बैठ जाते थे और मैं उसको कमेंट्री देता था और विजुलाइज करके उनको पूरा बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन के अंदर ले जाके और उनको विजुलाइज कराते थे कि वी हाउ यू आर परफॉर्मिंग। अभी हम लोग भी यहां बैठ के करेंगे, एक वॉकिंग का राउंड करके आएंगे पूरे ज्ञान सरोवर में। तो ये सिंपल टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि आप मतलब सेकेंड पोजिशन से विनर बन सकते हो। ये हमने वहां भुवनेश्वर में जब प्रैक्टिस की तो मैंने यहां संस्था के राज्यों के ऊपर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हठ योगा के सर्टिफिकेट के कोर्स के ऊपर ये चार्ट बनाया काफी स्टडी करके कि ये कैसे कनेक्टेड है हमारे सुपर माइंड, सोल माइंड, ब्रेन एंड बॉडी। अगर हमने ये चार्ट समझ लिया और हमने बिलीफ सिस्टम को बैठा लिया अपने अंदर, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो एकदम डिफरेंट होगा। हालांकि ये समझने के बाद प्रैक्टिस चाहिए, कोई भी चीज आप करते हो, आप साइकिल भी चलानी सीखते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप चलाते हो फिर गिरते हो फिर चलाते हो फिर गिरते हो, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप बिना हाथ पकड़े साइकिल चला सकते हो। क्योंकि जब हम सीख रहे हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से सीख रहे हैं, चेतन मन से। जैसे ही हम उसको रिपीटेडली अभ्यास करते हैं विद आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेते और फिर वो उसको एक नेचुरल एक हैबिट बन जाती है और हमें एक आदत पड़ जाती है। अगर हम मैच से पहले कोई एथलेटिक इवेंट से पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, बॉक्सिंग से पहले करें, रेसलिंग से पहले करें, तो आपके परिणाम एकदम डिफरेंट मिलेंगे। वो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ किए इस चार्ट के द्वारा। इसमें दिखाया गया है कि जो पूरी दुनिया है ये दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो है फिजिकल वर्ल्ड और एक है मेटाफिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड हमें फिजिकल आईज के द्वारा आसमान तक दिखाई देते हैं। आसमान का कलर कैसा दिखता है? ब्लू ना? सूर्य से हमें फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पावर मिलती है, एनर्जी। आप जैसे ही ब्लू स्काई के पार जाएंगे तो देर इज ए गोल्डन रेड लाइट, जो कि हम अपनी थर्ड आई से वहां जा सकते हैं। उसको कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सोर्स को नहीं समझेंगे, यूनिवर्सल सोर्स को, तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते अपने आप। तो जैसे हमें फिजिकल वर्ल्ड में ऊर्जा मिलती है सन से, ऐसे ही पूरे संसार को ऊर्जा मिलती है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, जो ज्ञान सूर्य है, सुप्रीम पावर है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है सभी। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ता, ध्यान में भी बैठ करके, जैसे मेरा पूरा लाइट का शरीर है एंड देयर इज अ डायमंड लाइक स्टार इन योर फोरहेड, और परमात्मा से ऊर्जा आकर के मेरे अंदर समाती जा रही है और मुझसे फिर और लोगों को मिलती जा रही है। सो दिस इज द ड्रिल विच वी डू इन द, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों वर्ल्ड हैं, यहाँ सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, उसके पार है गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, जहां से सोल आती है इस संसार में पार्ट प्ले करने के लिए। और इसमें पार्ट प्ले करने के लिए एनर्जी आती है सोल के अंदर, तो मैंने यहां लिखा है KP2LHBP। तो ये इसकी एनर्जीज हैं, मतलब इनिशियली जब हम संसार में आते हैं सतयुग में, तो इनमें 100% एनर्जी होती है सोल के अंदर। ये है नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। तो ये जो पावर शब्द है, ये खिलाड़ियों को चाहिए। दीज आर द 7 सप्लीमेंट्स ऑफ द माइंड। उसके बाद सोल से एनर्जी आती है माइंड के अंदर। माइंड भी एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन, मतलब हिंदी में कह सकते हैं जागृत मन और अर्ध जागृत मन। तो जागृत मन कब काम करता है? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, और अर्ध जागृत मन तब काम 24 आवर काम करता रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस। उसके बाद एक और डिफरेंस क्या है कि चेतन मन कमांडर की तरह काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड सेना की तरह काम करती है, लाइक ए सर्वेंट। अब हमारे कमांडर ने कहा कि इतने एरिया को नष्ट कर दो, तो सेना क्या करेगी? नष्ट कर देगी उसको। आपने अपने आप को कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है इस बार जीतना, ये काम तो बहुत मुश्किल है, आपने जो भी अपने आप को कमांड दिया, तो रात को सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर कर लेता, और आपके जीवन के अंदर वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देते। तो ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट फैकल्टी है जो हमें मिली हुई है, और हमारे सोच के आधार पर हमारा फिर भाग्य बनता है। तो इसमें कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। आप पूरे दिन में जो भी चिंतन करते हैं, चिंताओं के, फियर के, है ना, फ्यूचर के बारे में, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सारी वरीज फिर सबकॉन्शियस माइंड दूसरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करके आपके जीवन में परिस्थितियों का और आपके भाग्य का निर्माण करता रहता है। ये शब्दों को समझता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड इमेज को समझता है। इसलिए मेडिटेशन करने के साथ साथ विजुलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन में तो हमने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा को याद किया, परमात्मा से शक्ति ली, और विजुलाइजेशन में आप कोई भी इवेंट करने जा रहे हो, जैसे मान लो आप अपने अपने घरों से यहां आए, और यहां आने से पहले ही आप विजुलाइज करो कि मतलब हम लोग वहां ट्रेन से जा रहे हैं, अब रोड उतरे, फिर वहां से व्हीकल लेकर के ऊपर आए और ज्ञान सरोवर पहुंच गए। अब ये चीज आप जाने से पहले यहां बैठ करके विजुलाइज कर सकते हो, बहुत सिंपल कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी हम सब अपने अपने घरों के सामने खड़े होंगे जाकर के, जस्ट 10 सेकंड के लिए, ओके। थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। कीप योर आईज ओपन एंड गो टू योर हाउस। अपने घर के सामने धीरे धीरे एंटर करेंगे अपने घर के अंदर। घर के मेंबर्स को विजुलाइज करेंगे। मीट ऑल द मेंबर्स। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। प्लीज कम बैक। वह मुलाकात कितना इजी है, एक संकल्प किया आप घर पहुंच गए, है ना। कोई दिल्ली से आया है, कोई चेन्नई से आया है, और एक संकल्प किया आप परमधाम पहुंच सकते हैं। परमात्मा के सानिध्य में बैठ के उससे ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं। पॉसिबल है कि नहीं? इतना संकल्पों की पावर है। एक सेकंड में आप अमेरिका जा सकते हैं, एक सेकंड में आप लंदन जा सकते हैं। तो इसी पावर को, इसी को हमें साधना है, इसी को ही सुपर माइंड से कनेक्ट करना है, जो सुप्रीम पावर है। और अपने कोई भी कारोबार को करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, मेंटल रिहर्सल। तो उससे क्या होगा कि ये हमारी जो पावर है ये ब्रेन के अंदर फिर इफेक्ट डालती है। जैसे हमारे हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या, कौन सा टेस्ट कराते हैं? ईसीजी कराते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऐसे ही अगर ब्रेन के अंदर कोई एक्टिविटी को हमें माप करना होता है तो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो हमारा जो ब्रेन है वो चार अवस्थाओं में फ्लक्चुएट करता है। एक है बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। इसका बहुत गहरा कनेक्शन है माइंड से। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बीटा लेवल में होते हैं। तो खिलाड़ियों को बहुत जरूरी है कि जब भी वो सो के उठते हैं तो अल्फा लेवल में, मतलब जब मेडिटेशन करते हैं तो अल्फा लेवल में आ जाते हैं उसके बाद, और जब हमारे संकल्प कम होते हैं तो हम थीटा लेवल में चले जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती है ब्रेन की, हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। और जब गहरी नींद होती है तो उसको कहते हैं डेल्टा वेव। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी दादी जी जो चीफ हैं इस संस्था की, दादी जानकी जी, इनके ऊपर जब टेस्ट किया गया तो इन्होंने जागृत अवस्था में अपने आप को डेल्टा वेव में ले जाकर के, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड किया कि शी वॉज इन डेल्टा वेव एंड शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द डेल्टा वूमेन ऑफ द वर्ल्ड। आज तक साइंटिस्टों ने ऐसा टेस्ट नहीं किया कि आप जागृत अवस्था में, आपको बोल रहे हैं कि आप उल्टी गिनती करो, फिर म्यूजिक भी बजा रहे हैं और उसके बाद भी आप अपने आप को इतना फोकस्ड करके रखें। तो ये जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं तो 12 टू 18 साइकल्स पर सेकेंड, और रिलैक्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या खुश रहेंगे तो हम आ जाएंगे अल्फा लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो टाइमिंग होता है कि जब भी हम सो के उठते हैं, चाहे हम सुबह, दोपहर, रात को, कभी भी, तो हमारा ब्रेन अल्फा लेवल में रहता है फॉर फ्यू मिनट्स, मतलब कैन से 5 to 10 मिनट, अगर हम बात करना शुरू ना करें तो। सो के उठने के बाद कोई भी बुद्धि का काम नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए, सारी नेगेटिव न्यूज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट हो जाती। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अपने बच्चों को, अपने एथलीट्स को हमें ये सारी शिक्षा देनी चाहिए कि जब भी हम सो के उठते हैं तो उठने के बाद हमें साइलेंस में बैठना है, ध्यान लग रहा है तो ध्यान करना है, और ध्यान भी नहीं लग रहा तो विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइजेशन भी नहीं हो रहा तो अल्फा सॉन्ग्स होते हैं जो हमारे बाबा के सॉन्ग्स हैं यहाँ पे, वो एक दो सॉन्ग बजा करके भी आप अपने ध्यान को लगा सकते हैं। आपने देखा हम यहाँ पे कोई भी सेशन करते हैं तो हमेशा स्टार्ट करने से पहले एक सॉन्ग प्ले करते हैं ताकि हम इंटरनली फोकस होकर के अपने माइंड के अपने संकल्पों को कम से कम करें। तो जितना हम कम सोचेंगे आत्मा उतनी ताकतवर बनती चली जाती, ये एक बड़ा नेचुरल लॉ है। आप ओवर थिंकिंग करेंगे आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो दो कंडीशन है, या तो आत्मा मन को कंट्रोल कर ले या फिर मन आत्मा को कंट्रोल कर ले। आत्मा ने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपको सफलता ही सफलता है, आपके जो मन में आया वो कर लिया तो उसमें विकर्म भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म भी हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी फिर चेंज हो जाती है। तो हमें उठते ही एकदम आत्मिक स्थिति में बैठ करके जो है ट्रेनिंग दी जाती है राजयोग मेडिटेशन की, तो ये अभ्यास करना है 1 से 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हो। सो दैट विल गिव यू द अनबिलीवेबल रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ये अल्फा लेवल पॉसिबल है, हाँ जी रेस्पॉन्ड करो नहीं तो फिर धीरे धीरे एनर्जी पॉसिबल है कि जब भी आप सो के उठेंगे लाइफ के अंदर कभी भी तो 5 से 10 मिनट आप सेल्फ के लिए डिवोट करेंगे। अभी आप में से कितने लोग करते हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जो उठने के बाद एकदम साइलेंस में रहते हैं, इमिडिएटली काम करना स्टार्ट नहीं करते, मतलब 25%। तो ये एक सबसे, उस समय हम एक गिलास पानी पी सकते हैं उसको चार्ज करके, ल्यूक वार्म वाटर, ठंडा नहीं बहुत ज्यादा, उसको ऐसे दृष्टि देके कि इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी ड्रिंक बनके मेरे सारे सेल्स टिश्यूज को एनर्जाइज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो वो संकल्पों से ही वो एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाती है। आपने संकल्प नेगेटिव किया तो नेगेटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड है क्या साइंस? अगर हम दूसरों के बारे में दुर्भावना करेंगे तो वहां से वापस वही आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम ज्यादा माइंड गेम खेलेंगे लोगों को डाउन करने के लिए तो आप खुद डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप शुभ भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, निस्वार्थ काम करेंगे और अच्छे के लिए काम करेंगे तो नेचर आपको, प्रकृति और परमात्मा वो आपको डबल फोर्स से उतना ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये लॉ है, लेकिन हम अपना खुद का माइंड यूज करके अपना भी नेगेटिविटी कर लेते हैं, असफल हो जाते हैं और दूसरों को भी असफल कर देते हैं। तो बहुत बड़ी साइंस है जो हमारे यहां से हर सेकंड एनर्जी रिलीज करती रहती है थॉट्स के रूप में। तो ये जो इसका हम ध्यान रखेंगे, यहां से ब्रेन से फिर बॉडी में इफेक्ट आता है ना, बॉडी के अंदर भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इसमें रिलीज होते हैं। वैसे तो दो मेन हैं, स्ट्रेस हार्मोन एंड हैप्पीनेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन को क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल। और हैप्पीनेस हार्मोन को कहते हैं एंडोर्फिन। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम जब भी सोते हैं तो सोने के पहले अपने आप को पूरा हैंडओवर कर दें, सरेंडर कर दें परमात्मा को, सारी समस्याएं उनको हैंडओवर करें और उस समय सो जाएं, तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी। भोजन करते टाइम भी हम परमात्मा की याद में भोजन करें, साइलेंस में करें, तो आपको काफी पावर मिलेगी। तो ये जो तीनों चीजें हैं, हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, कॉर्टिसोल, ये फिर बॉडी को REDD ये भी इफेक्ट करते हैं, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट। इन तीनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल होना है। तो कई बार हमारी टीम इसलिए हार गई हॉकी की टीम का एक बार हम पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर में आया था, कैप्टन ने बताया कि हम ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए मैच था और ये सोच सोच के हमारी टीम को नींद ही नहीं आई। रात को 1:45 बजे नींद आई, सुबह 8 बजे मैच था। और कैप्टन ने एक ये रीजन बताया कि दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हम एक सिंपल सी टीम से हार गए। एक बार साइना नेहवाल इसलिए हार गई अपने इस लो रैंकिंग वाले प्लेयर से कि जिस बस से उसको वहां जाना था वेन्यू पे वो छूट गई, उसके बाद दूसरी बस से गई और जाने के बाद स्ट्रेट विदाउट वार्म अप वो उसमें ग्राउंड में गई कोर्ट में और खेलना स्टार्ट किया एंड सी लॉस्ट। तो ये इतनी तैयारियां हम करते हैं ओलंपिक के लिए, 4 साल तक करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है और लास्ट में आकर के हमारी कोई एक दो फैक्टर्स के कारण हम वो गलती कर बैठे। कई बार ये डाइट के बारे में जो फॉरेन के एथलीट्स होते हैं उनके लिए वहीं के कुक रहते हैं, अभी हम जो रियो ओलंपिक गए तो पूरा उनका जो किचन का सामान था वो अपने कंट्री से ही लेके आए। अब एक इंडियन एथलीट जाकर के चाइना में अगर वहां का भोजन खाएगा तो उसको उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं? उसको हमारे कुक ना हो, हमारा जैसा जो हम यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के अंदर जो हम फूड खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो अगर उसकी व्यवस्था प्रॉपर ना हो तो इट विल अफेक्ट। अमेरिका की टीम थी यूएसए की, वो एक बहुत बड़ा शिप लेके आए थे वहां पे, उसके अंदर अकोमोडेशन, उनका प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड, हर चीज उसके अंदर, और कई महीने पहले वो वहां पहुंच गए थे। तो पुलिस के द्वारा कोऑर्डिनेशन के लिए अलग सिक्योरिटी स्टाफ। अब लास्ट मोमेंट में आपकी किट चोरी होगी, आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो एथलीट डिस्टर्ब होगा कि नहीं? मेंटली इट विल अफेक्ट। तो इतनी सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रेस्ट भी प्रॉपर हो। एक बार अभी रिसेंटली क्रिकेट टीम हमारी इसलिए हार गई कि रात को हमारा एक अपोनेंट जो जनरली जिसके अगेंस्ट में पूरा देश मैच को देखने के लिए स्टार्ट रात भर जागता रहता है, तो उस मैच उस टीम के साथ उन्होंने हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी टीम जीत जाएगी लेकिन हार गई। बाद में मैंने आर्टिकल पढ़ा कि रात को लाइट चली गई होटल के अंदर, जबकि ऐसा रेयर होता है कि इतने बड़े होटल के अंदर लाइट चली जाए और पानी चला जाए। पूरी टीम जग गई और जगने के बाद फिर दोबारा सोने के लिए उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ। वो कुछ गेम था मतलब किसी का, वो तो एक बहुत दूसरा इश्यू है, वो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, बट द रीजन वॉज कि टीम ने रेस्ट प्रॉपर नहीं लिया और वो मैच हार गई। उसमें ऐसा रेस्ट के कारण भी होता है, तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि जहां हम जा रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो कि रात को आपको रेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो। कई बार कहीं ऐसी जगह गए मॉस्किटोज प्रॉब्लम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, सुबह मैच हार जाओगे आप। तो हमें एडवांस में इन सब चीजों का ध्यान रखना है तो डेफिनेटली मेडल मिलेगा। एक्सरसाइज के बारे में, अब हमारी डाइट भी ठीक है, रेस्ट भी ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर हमें नॉलेज नहीं है, तो मेडल मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे? हमारे देहातों में देसी घी खा के और पूरे जो पहलवान प्रैक्टिस करते हैं, एक सिंपल उनके डाइट रहती है कि भाई अच्छा सा घी खाओ और मतलब काजू बादाम किशमिश, उसके बाद जो और प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसकी नॉलेज नहीं होती कम से कम 20-25 साल तक भी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये न्यूट्रिशन एंड डाइट, हमारा 9 लेक्चर होते हैं इसमें, तो 9 लेक्चर में ये सारा कवर करके और उस एथलीट तक ये सारी जानकारी पहुंचाई जाए कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से आपको कौन सा फूड सूट करेगा। जब सुशील कुमार पहलवान इंडिया में रहते हुए एक नॉर्मल डाइट सात्विक भोजन खाते हुए वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो और एथलीट नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। तो इट इज द विल पावर जो मेन इफेक्ट करती है। उसके बाद ये रेस्ट एक्सरसाइज डाइट, इनका जब हम बैलेंस करते हैं तो बॉडी ब्रेन माइंड सोल और ये जो सुपर माइंड, इनका आपस में जो गहरा कनेक्शन है ये 5 से 10 मिनट की ट्रेनिंग से पूरा अलाइनमेंट में आ जाता है। और जब आपका मेंटल और फिजिकल लेवल से अलाइनमेंट है तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट जाएगी। फिर इसमें कुछ माइंड सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, नॉलेज, नॉलेज किसकी, आत्मा, बाबा, कनेक्शन एंड ड्रामा। मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है संसार में, इस ड्रामा की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। हम कहां से आए, क्या हमारे लाइफ का एम है, और राज्यों का मैं आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ का भी बहुत बड़ा पर्पज है। ये केवल एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली फिट करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा और भी बड़ा हायर लक्ष्य है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ हमें लाइफ के अंदर भी मेडल जीतने हैं, सोसाइटी के अंदर भी एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। ये नहीं है कि गेम छोड़ करके हम नेगेटिव आदतों में पड़ जाएं। कई बार आपने देखा होगा कि हम पावर गेम्स जो होते हैं, खासकर ऐसे एथलीट, वो गलत सोसाइटी में चले जाते हैं और फिर सब उल्टा सुलटा काम, जो इतना नाम कमाया था वो नाम कमाने के बाद फिर उतनी बदनामी होना स्टार्ट हो जाती। तो इन चीजों में ये नॉलेज भी जरूरी है, प्योरिटी भी जरूरी है लाइफ में। अब एक मैं कैंप में गया तो वो साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग दे रहे थे कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ इट इज ए टॉपिक ऑफ डिबेट, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो यहां इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और जितना आप मन को दिमाग को शांत रखेंगे उतना ही आपकी जो माइंड पावर है वो बढ़ती जाएगी। अपने आप को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, किसी ने कुछ आपके बारे में बोल दिया, कमेंट कर दिया, जबकि क्रिकेट में जनरली ऐसा होता है, स्लेजिंग होता है ना, पीछे विकेट कीपर, आप बैटिंग कर रहे हो, वो पीछे से ऐसी ऐसी गालियां देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जिडाने का एग्जाम्पल है, आपको फुटबॉल मैच याद होगा, जिडाने ने उस जो एथलीट फुटबॉलर था उसने कुछ गलत लैंग्वेज उसको बोल दी, और गलत लैंग्वेज बोलने के बाद उसने हेड से उसके चेस्ट में इतनी जोर के मतलब हेड को मारा एंड ही फेल डाउन। रेफरी ने उसको रेड कार्ड दिखाया और ग्राउंड से बाहर। जो टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली थी, एक छोटे से इंसिडेंट के कारण फ्रांस लॉस्ट द वर्ल्ड कप। तो लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, दीज आर द सप्लीमेंट्स। और ये कुछ एनिमीज भी हैं हमारे माइंड के। मान लो आप बहुत गुस्सा करते हो छोटी छोटी बातों पे, रिएक्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा बढ़ेगी? तो ड्रेन होगी ना मेंटल एनर्जी। तो हमें बार बार गुस्सा नहीं करना चाहिए छोटी छोटी बातों। और उसके लिए ये जो हमारे यहाँ सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस कराई जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मिक स्थिति से जब लोगों को देखेंगे तो आत्मा की शक्तियां एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूं, तो वो फॉल्स ईगो फिर हमारे वाइसेस को जन्म देती है, जिसमें ये सातों वाइसेस आते हैं। एंगर है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत से एथलीट, टैलेंटेड एथलीट्स इसलिए कैंप में नहीं जाते कि वो अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकते। आप उनको 5-10 दिन के लिए भेज दो तो इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है घर के अंदर कि बार बार फोन करना, बार बार पूछना। सो हमें डिटैच होकर के भी रहने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे कैंप में भेजें, ट्रेनिंग कराएं और उसके टैलेंट को निखारने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिलवाएं। और ईगो, अहंकार, फियर, ग्रीड, कई बार हम इतना पैसा मिलता है, जो फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, तो पैसे की कमी है क्या क्रिकेट में? तो फिर भी हम मैच फिक्सिंग में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रीड को जन्म दे दिया। तो जैसे ही हम सोल कॉन्शियस में बैठेंगे तो वी विल ओवरकम ऑल दी 7 एनिमीज। इतना सिंपल है। आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग साइलेंस में बैठाते हैं ना, तो जब भी बैठे हैं तो बैठने के बाद आपको विजुलाइज करना है कि ये पूरा शरीर लाइट का बना हुआ है एंड देयर इज अ डायमंड लाइक स्टार इन माय फोरहेड। आप ये संकल्प करके देखो एक मिनट के लिए, तो आपका जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इंस्टेंटली एकदम चेंज हो जाएंगे। कितने संकल्पों के तूफान आ रहे हैं माइंड में, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। आप एक मिनट के लिए ऐसा बैठें कि आई एम ए सोल और ये भी सोल है। तो जैसे ही सोल कॉन्शियस में आप आएंगे, आपका पूरा गुस्सा एकदम खत्म हो जाएगा। आप ड्रिल कर सकते हो एक मिनट के लिए, भले एक मिनट के लिए जस्ट साइलेंस में बैठेंगे कि आई एम ए डिवाइन सोल एंड वेरी पावरफुल एंड लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द ग्लोब। जस्ट एक मिनट के लिए ऐसा करेंगे और अपने फोर फिंगर और थंब को ऐसे ज्ञान मुद्रा में, और लेग को क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे दोनों पैरों को ऐसे सीधा करके जस्ट प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट। उसके बाद मैं ओम शांति बोलूंगा। यू कैन हैव ए फील कि हाउ यू आर फीलिंग। आई एम ए वेरी पीसफुल सोल shining in my forehead, very pure soul, irrespective of social status, all are souls. आई एम वेरी लकी, मुझे स्वयं का परिचय मिला। अभी संकल्पों से ऊपर जा सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाएं, सूर्य चांद तारों को भी क्रॉस करके परम पिता परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप में देखेंगे। परमात्मा की शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश करती जा रही हैं। स्लोली स्लोली कम बैक। कैसा भी गुस्सा आ रहा हो, तो जब भी आप इस टाइप की ड्रिल करेंगे तो ये सातों एनिमीज के ऊपर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। कोई संकल्प, किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प आ रहा है, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो ट्राई नॉट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन फ्रीक्वेंटली। तो अपने आप को थोड़ा डिटैच करें, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग एवरीथिंग इज ओके। तो ये सब, ये कुछ हमने एनर्जीज के ना लेवल्स देखे हैं कि हमारी एनर्जी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स कौन है? परमात्मा है ना, परम धाम में जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। उसके बाद ये डाइटीज हैं, डिवाइन प्लेसेस। अब आपने देखा होगा पहलवान है वो हनुमान जी को याद करके और इतनी अच्छी कुश्ती लड़ेंगे और मेडल जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देवता को याद किया। उसके बाद सोल एनर्जी, हमारी खुद की ऊर्जा, हमने जितनी प्रैक्टिस की होगी उतनी हमारी हिडन पावर्स अवेकन होना स्टार्ट हो जाती है। अभी पावर तो है लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने से वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रकृति के अंदर भी बहुत पावर है। जितना हम नेचर से कनेक्ट करेंगे, जितना हम नेचुरोपैथी करेंगे, नेचुरल चीजों का सेवन करेंगे, तो हमारी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, और इसके वाइस वर्सा भी है। अगर सात्विक भोजन होगा तो और अच्छा है। हमारे मन में संकल्प विकल्प जितने भी, ऐसा पाया गया है कि मेजोरिटी लोग जो भी क्राइम करते हैं या गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं सोसाइटी में, उनका फूड भी सात्विक नहीं होता है। तो ये हमारे माइंड को बहुत इफेक्ट करता है। हम बच्चों के लिए ध्यान रखें कि बचपन से ही अच्छे अच्छे उनको मतलब फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फूड में तो फ्रूट्स में फिर भी थोड़ी कल केमिकल्स वगैरह हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स इज ए गुड रिप्लेसमेंट। ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा मिक्सिंग नहीं होती। सब्जी में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दाल वगैरह दे आर फुली न्यूट्रिशियस। तो हम ऐसे कोई ना कोई इसका रिप्लेसमेंट करके और उसका ध्यान रखें। एक्सरसाइज कोई ना कोई जरूरी है, वॉकिंग, मैराथन, ट्रैकिंग, वेरी गुड एक्सरसाइज। हम लोग यहाँ इवेंट कराते हैं, अभी नीचे भी एक मैराथन है अगस्त में, माउंट आबू में अभी कराई थी 1 अप्रैल को। लिहाज त्रिवेदी जी हैं अहमदाबाद के, तो उनके साथ मिलकर के हम काफी ये एक्टिविटीज कराते हैं। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इस बार मैं बिना प्रैक्टिस के एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की एंड आई रेन द मैराथन। और पहाड़ों में आप जान सकते हैं कि नॉर्मल प्लेन से तो ज्यादा ऊर्जा लगती है ना, तो लगभग 2 घंटा 35 मिनट में 21 किलोमीटर मैंने वो पूरी कर दी थी। तो मैराथन या रनिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें ना तो आपको स्टेडियम चाहिए, ना ग्राउंड चाहिए, ना इक्विपमेंट चाहिए, ना पार्टनर चाहिए। क्या चाहिए उसमें? शूज चाहिए, और शूज हमारे पास होते ही हैं। आप ग्राउंड पे जाओ, रोड पे जाओ, यहां से पांडवन चले जाते हैं हम लोग वॉक करके। तो इसलिए मैंने इस इवेंट को अपने लाइफ का हिस्सा बनाया, अपने आप को फिट रखने के लिए। एयरटेल डेली हाफ मैराथन होती है, हर 3 महीने में एक हाफ मैराथन रन करने के लिए मैंने एक संकल्प किया हुआ है। और कई बार प्रैक्टिस करने का मतलब टाइम नहीं मिलता है, ट्रेवलिंग होती है, सेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी 4 या 5 हाफ मैराथन हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब तक आत्मा इस व्हीकल के अंदर है तो हमें फिजिकल फिटनेस का भी उतना ही ध्यान देना है जितना मेंटल फिटनेस का ध्यान देना है। और उसका तरीका है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग और ये ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मैराथन से भी ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी हाइट चढ़ी और कितना आपने मतलब एग्जर्शन किया। हम लोगों ने अभी धन्ना कुन्नू पास यहां गए थे, तो कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रैकिंग का, और वो ट्रैकर्स गौरव शर्मा जो माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए हैं, आप जानते होंगे गौरव शर्मा जी को, जयपुर से वो ट्रैक के लिए पूरा ग्रुप को लेके गए थे। तो आप उनसे कभी मिले तो अनुभव पूछना, मैं और एक और भाई मेरे साथ थे, तो पूरी ट्रैकिंग में मतलब वी वर ऑल पूरा लीड करते गए आगे तक, जबकि जीवन में कभी ट्रैकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। वहां जाकर के मैंने संकल्प किया कि साल में 2 बार मतलब ट्रैकिंग के लिए जरूर जाना। फिर वहां कैंप भी लगाया माइंड पावर का, ट्रेनिंग का, और सभी को बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने भी फिर राजयोगा की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करके, और काफी लोगों ने 3 दिन का कोर्स भी किया, और कोर्स करने के बाद उनके जीवन में बहुत चेंजेस आए। तो आप भी कोशिश करके जब यहां से जाएं, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, तो राजयोगा माइंड पावर ट्रेनिंग का 3 दिन का कोर्स होता है, वो कोर्स करने के बाद देन यू कैन डू ऑफ योर ऑन। वीडियोज, ऑडियो कैसेट्स हैं जो हेल्प करने के लिए। तो और एक ये रेस्ट जैसे हमने बताया था, तो ये एनर्जीज का हम ध्यान रखें अपने आप को। मेडल जो भी इवेंट होती है, इंटरनेशनल इवेंट, कोई भी ऐसी फील्ड ना हो जिसमें हमने अपने आप की तैयारी नहीं की हो। जैसे ये निकोला टेस्ला एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर थे, वी आर ऑल बायो इलेक्ट्रिक क्रीचर्स फ्लोटिंग इन द इलेक्ट्रिक सी ऑफ द इलेक्ट्रिक यूनिवर्स, वी आर सराउंडेड बाय द इन्फिनिट ओशन ऑफ एनर्जी। आप जब इनविजिबल वर्ल्ड को देखेंगे तो पूरे संसार में ऊर्जा ही फैली हुई है चारों तरफ। सन से हमें इतनी ऊर्जा मिल रही है, अगर सन के नीचे हम पेपर लगाएं तो जलता है क्या? जल जाता है या नहीं? और बीच में लेंस लगा दें, जल जाता है। क्यों? कंसंट्रेटिव होगी, है ना, रेज कंसंट्रेट होगी, फोकस होगी, तो हमें पावर मिलती रहती है परमात्मा से, सबको पावर मिलती है। लेकिन जैसे ही हम सोल कॉन्शियस में बैठेंगे तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करना स्टार्ट हो जाती है। अभी कलयुग के अंत में आत्मा के अंदर 0.5 to 5% पावर ऊर्जा रही है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, थोड़ा दो गाड़ी टच होगी एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, इतना मतलब आत्मा के अंदर बैटरी जो एकदम लो लेवल पे आ चुकी है। इसको चार्ज करने के लिए सुप्रीम बैटरी से कनेक्शन करना ही एक प्रोसेस है। इसमें ना कोई रिचुअल्स चाहिए, ना कोई परिक्रमा चाहिए, ना कोई बहुत बड़े हवन चाहिए, केवल मन को प्योरीफाई करके शुद्ध संकल्पों से, अच्छे संकल्पों से बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम से कनेक्ट करने की। और ये बहुत इजी है अगर आप इस बिलीफ सिस्टम को, जो आपका पुराना बिलीफ सिस्टम है, उसको थोड़ी टाइम के लिए साइड में रख के और ये नए बिलीफ सिस्टम को अपनाएंगे और समझेंगे तो आपका एक ऊर्जा लेवल एकदम डिफरेंट होगा। और ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि देर इज ए एनर्जी इन अवर फोरहेड जिसके कारण हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन सब काम करते हैं। जैसे ही वो एनर्जी निकल जाती है, एक अच्छा बॉडी बिल्डर भी 1 किलो वजन नहीं उठा सकता, उठा सकता है क्या? तो ये जो पावर है सोल पावर, ये फिजिकल पावर के साथ मिलकर के इन दोनों का कॉम्बिनेशन और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन द मेडल। अब हमें फिजिकल ट्रेनिंग तो पूरी दी जाती है और अब ये जो ट्रेनिंग है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, इसको भी हमें कैंप में इंक्लूड करना है और इसको इंक्लूड करके 2020 का जो टोक्यो का ओलंपिक गेम है इसमें हमें टारगेट रखना है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा मेडल लेने। तो इस चीज के लिए हमने ये कोर्स डेवलप किया है और कुछ टूल्स हैं जो हम ट्रेनिंग कराते हैं एथलीट्स को कैंप में जाकर के। उसमें सबसे नंबर वन है अफर्मेशन। अफर्मेशन जैसे बलराम भाई ने आपको बताया था, वन लाइन स्टेटमेंट, आपका मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है, विजुलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, कंपटीशन फियर इतना ज्यादा आ गया है, फुल्ली नर्वस हो चुकी है, मतलब माइंड एकदम नर्वसनेस आ गई है माइंड में, तो यू कैन यूज दिस अफर्मेशन, आई कैन डू इट, आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी, ऐसी अफर्मेशंस हैं तो उनको हमें माइंड में बार बार रिवाइज करना। तो स्टिल यू कैन चार्ज योर सेल्फ, यू कैन फोकस योर माइंड, यू कैन अलाइन योर माइंड। तो इम्पोर्टेंट इज कि माइंड के अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं आए डूइंग द कॉम्पिटिशन। किसी ने कुछ कमेंट कर लिया, अरे देख लिया तुम कहां का मेडल जीतेगा, हम देखते हैं, इसी बात से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए मेंटल ब्रेक लगा के उसके लिए शुभ भावना दे के और उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने आप को बचाना। और जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाएंगे यू विल बी एबल टू फोकस योर माइंड। फिर है सेल्फ स्टडी। अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो उस फील्ड की किताबों को पढ़ें, उस फील्ड के जो अच्छे अचीवर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के उनकी जीवन कहानी को पढ़ें तो आपको बहुत पावर मिलेगी, बहुत आइडियाज मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो वी शुड स्टडी द लाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं, कपिल देव जी, तो वो आपको बहुत बड़े आइडिया मिल जाएंगे और उससे आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये कुछ स्किल्स हैं जैसे स्पीकिंग स्किल्स, खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सेशंस भी लेने चाहिए, 5-10 मिनट के सेशन। इसका बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत आता है, नहीं तो कई बार क्या होता है स्टेज पे आते हैं या जैसे कैप्टन है उनको लीड करना है, तो जब आप इस टाइप की स्किल्स को डेवलप करेंगे तो टीम के ऊपर अच्छा कंट्रोल आप कर पाएंगे। और राइटिंग स्किल्स हैं, रोज कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे यहाँ मुरली मॉर्निंग में सुनाई जाती है तो मुरली से हम सारा चिंतन मनन लेते हैं, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो मॉर्निंग में जब आप कोर्स कर लेंगे तो वो मुरली के अंदर ऐसी सी बातें होती है नॉलेज की, आप दुनिया की नॉलेज से और हमारे मुरली के पॉइंट से जब कंपेरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत पॉजिटिविटी हमारे माइंड के अंदर बनती जा रही है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है मुरली सुन के। ये चीजें रीडिंग और ड्राइविंग स्किल्स, ड्राइविंग से भी लेफ्ट राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल्स है। हम ये ना सोचें कि नहीं ये तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। आजकल हर कदम पे आपको इन चीजों की जरूरत है। तो एक्सपर्टीज जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ये स्किल्स हमारी बढ़ती जाएंगी। फिर राजयोग, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये कुछ मैंने अफर्मेशंस लिखी हैं, तो आप कॉम्पिटिशन से पहले या सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा ब्रेन जब अल्फा लेवल में होता है तो हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है 5000 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है वो विजुलाइज करने की। खासकर अमृत वेला, अमृत वेला मतलब 4 से 5 का समय मॉर्निंग में, दैट टाइम आवर एब्जॉर्प्शन पावर अवेयरनेस बिकम्स 5000 टाइम्स मोर। और हमारे जो ये कुछ अफर्मेशंस हैं, आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फैंटास्टिक, तो ये एक्सरसाइज भी हम कराते हैं। बलराम भाई ने कराई थी आपको एक्सरसाइज, सभी को कराई थी? नहीं पीयूष जी आपने की थी क्या? आप आज ही आए हैं, आपने हरिद्वार में तो की होगी। हरिद्वार में सर ने बुलाया था हमें, ये सेक्रेटरी हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन के, तो वहां ये सेशंस हुए थे तो सभी को बहुत अच्छा लगा। सो दीज आर सम ऑफ द अफर्मेशंस। फिर विजुअलाइजेशन के बारे में, विजुअलाइजेशन का मतलब कोई भी काम करने से पहले हम उसको मेंटल लेवल पे कर लें एडवांस में। बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो हम उसको विजुलाइज करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, वही क्वेश्चन पेपर आए जो आपने तैयार किए, और एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट गुड स्कोर। आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम को विजुलाइज करा दें बैठा के कि पूरी टीम जा रही है ग्राउंड के अंदर और बहुत अच्छे से आपने रनिंग की, जो भी इवेंट हो, 100 मीटर, 400 मीटर, ये अलग अलग इवेंट के हिसाब से आपको अलग अलग ये ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। अभी मैं जो आपको कराऊंगा वो सिंपल, यहां से नीचे जाके हम पूरा वॉक करके और वापस आएंगे। सो दैट एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू डू इट। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, किसने कहा ये? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही सेड ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। कई बार एमटेक किया हुआ व्यक्ति अच्छी कार नहीं चला सकता, 10वीं पास बहुत अच्छी कार चला देता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन। कई बार आप ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज देते हैं बिल्कुल जिनकी एजुकेशनल लेवल ज्यादा हाई नहीं है, उनके आइडियाज अच्छी अच्छी समस्याओं का समाधान आपको दे देंगे, और अच्छे पढ़े लिखे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, दे कैन नॉट गिव यू दैट सॉल्यूशन बिकॉज दे लैक एट द इमेजिनेशन। यू आर ओनली ए फ्री एंड एज पावरफुल एज योर इमेजिनेशन, वी आर अनलिमिटेड इमेजिनेशन। तो अभी हम 3 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, फिर से यहां से हम एकदम साइलेंस में बैठ करके विजुलाइज करेंगे कि हमारा लाइट का शरीर बना हुआ है और हम यहां से निकल के बाहर जा रहे हैं, पूरे ज्ञान सरोवर का एक राउंड लगा के और वापस यहां आकर के बैठेंगे। तो ये एक ड्रिल है जनरल, बट ये पर्टिकुलर गेम के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर फिंगर एंड थंब, सेव टू कनेक्ट, ध्यान मुद्रा, और अपने हाथ में जो भी आइटम है उसको साइड में रखेंगे, मोबाइल और ये सब चीजें साइड में रख देंगे, क्रॉस लेग नहीं बैठेंगे, आपको दोनों फीट टच करने ग्राउंड पे, जस्ट सिंपल एंड रिलैक्स योर सेल्फ। अभी मैं एक कॉमेंट्री करता जाऊंगा, उसके हिसाब से आप ये अपने आप को विजुलाइज करते जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, रिलैक्स योर सेल्फ, नाउ इमेजिन दैट माई फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाइट लाइट, जस्ट लाइक एन एंजल। बिल्कुल फरिश्ते स्वरूप में एमर्ज करेंगे अपने आप को। नाउ माई सटल बॉडी इज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ऐसा विजुलाइज करेंगे कि मेरा सूक्ष्म शरीर इस हॉल से बाहर निकल के सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जाएं। यू कैन क्लोज योर आईज फॉर ए बेटर विजुलाइजेशन। क्लोज योर आईज, नीचे उतरते जाएं सीढ़ियों से। सुबह सुबह का मौसम है, बहुत कूल वेदर। पूरा ज्ञान सरोवर का एक राउंड लगाएंगे रिसेप्शन के सामने से क्रॉस होते हुए डाइनिंग हॉल के सामने से भी नीचे की ओर जाते हुए पूरा राजऋषि हॉल की तरफ वॉकिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग सभी एक लाइन में। पूरा ज्ञान सरोवर का राउंड लगा के धीरे धीरे वापस आएंगे। किचन को भी क्रॉस करते हुए मेडिटेशन हॉल के सामने जो ग्राउंड है उसमें सभी लोग एक राउंड में खड़े होंगे सर्कल बना के। नाउ वी विल डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। नाउ विजुलाइज द सन इज ऑल्सो राइजिंग। Feel the sunlight on your face. अभी एक्सरसाइज करेंगे नेक एक्सरसाइज। नेक रोटेशन बोथ द साइड। उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे। फ्रंट टू बैक 5 times। देन हिप रोटेशन। नाउ नी एक्सरसाइज। टो एक्सरसाइज। पूरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके हम लोग वापस आएंगे हॉल के अंदर सीढ़ियां चढ़ के। ओपन द डोर ऑफ द हॉल, हार्मनी हॉल। अपने अपनी सीट के ऊपर जहां पे हमारा फिजिकल बॉडी है वहीं आकर के वापस आ जाएंगे। Take your own seat. Open your eyes. Rub your Buddha palm. Put it on your face. अच्छा हो गया विजुलाइजेशन? हुआ किसी को जिसको बहुत अच्छा हुआ हो हाथ खड़ा करें। अरे वेरी गुड, सभी को हुआ? कोई एक जो एक्सपीरियंस सुनाना चाहेगा, जस्ट कम हियर। कोई एक नहीं है कॉन्फिडेंस? आओ उधर ही देते माइक। तो मैंने ऐसे ही योगेश्वर दत्त जी को कराया, रेसलिंग वालों को पूरा ग्राउंड में ले गए, रेसलिंग कैसे कर रहे हैं। वो आधा पौना घंटा तक, ऑफकोर्स वो सवासन में कराया था, तो ही हैड ए वेरी डीप विजुलाइजेशन। तो ये चीजें हैं, है सिंपल टेक्निक लेकिन पूरे आपके मैकेनिज्म को एकदम स्ट्रांग एक्टिवेट कर देगी। अब आप देखो इन्होंने कैसे विजुलाइज किया है, कन्या ने। जस्ट योर नेम एंड विच गेम यू आर।
माय नेम इज प्रीति मेनकुदरे एंड आई प्ले टाइकोंडो। कैन आई टॉक अबाउट माय विजुलाइजेशन?
बोलो बोलो।
एक्चुअली आई हैव रिसेंटली बीन थ्रू एन सर्जरी, बट देन आई हैवंट वॉक्ड फॉर अ मंथ एंड मोर, बट देन नाउ आई सॉ माई सेल्फ रनिंग आउटसाइड एंड डूइंग कार्टव्हीलिंग एंड यू नो एवरीथिंग विच आई ऑलरेडी डू बट आई कुडंट डू फॉर अ मंथ एंड इट वॉज रियली लाइक इट फेल्ट लाइक आई वॉज रियली डूइंग इट।
मतलब इनको बहुत अच्छा विजुलाइजेशन हुआ कि जैसे प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करके। थैंक यू। तो आप काइंडली जब भी ये ट्रेनिंग कराएं या आप किसी एथलीट को, जैसे कोचेज हैं हमारे बीच में, तो जितना हम एक्सरसाइज फिजिकली करा रहे हैं उसमें ही इम्पोर्टेंट ये 5 to 10 मिनट की विजुलाइजेशन, चाहे वो ग्राउंड में आने के बाद करें, चाहे ग्राउंड से जाने के बाद अपने रूम में करें, रूम से ग्राउंड में आने से पहले करें। तो इसको कम से कम दिन में 3-4-5 बार उसके प्रैक्टिस की आदत पड़ जाए कि मुझे ये करना ही है, नॉट ओनली इन एक्सरसाइज, इन एनी वॉक ऑफ योर लाइफ। तो यू शुड डू दिस। तो थैंक यू फॉर योर नाइस पेशेंट लिसनिंग। बीच बीच में भी